شنبه. او یک کباب داده که پرسنل ملاقات پہلا گروپ. جیسے اونچے اونچے باپ ہے ایسے ہم آتمائیں بھی اونچے سے اونچی شریشٹھ آتمائیں ہیں. ایسے انوبھو کرتے ہوئے چلتے ہو کیونکہ دنیا والوں کے لیے تو سب سے شریشٹھ اونچے اونچے باپ کے بعد کون ہے؟ دنیا والوں کے لیے دیوتا ہے. لیکن دیوتاؤں سے اونچے آپ برہمن آتمائیں ہو فرشتے ہو یہ دنیا والے نہیں جانتے. دیوتا پد کو اس برہمن جیون سے اونچا نہیں کہیں گے. اونچا ابھی کا برہمن جیون ہے. دیوتاؤں سے بھی اونچے کیوں ہو اس کو تو اچھی طرح سے جانتے ہو نا. بابا کہتے ہیں تم دیوتاؤں سے بھی اونچو. کیوں؟ دیوتا تو لکش ہے. کیا لکش ہے؟ لکش سے ہم اونچے؟ لکش تو پانا ہے. تو برہمن اونچے ہیں یا دیوتا اونچے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ چوٹی ہے. برہمنوں کی ہے چڑھتی کلا, دیوتاؤں کی ہے گرتی کلا. گرتی کلا کہاں سے چالو ہوتی ہے؟ گرتی کلا کہاں سے چالو ہوتی ہے؟ چڑھتے ہی اترنا چالو ہو جاتا ہے. دیہ بھان کی پرویشتا کہاں سے؟ جس سمے آئے اس سمے سے فرسٹ ڈے فرسٹ منٹ سے ہی پاور کم ہونا چالو ہوتی. اگر دیکھا جائے تو وہیں سے گرنا چالو ہے. آتما جیسے سنسار میں آتی ہے دیہ تو تھوڑا سا بھان تو وہاں پر بھی ہے. دیوتا ہے شادی تو کرتے ہیں نا. ہاں آتمک شکتی اتنی زیادہ ہے کہ وکار وہاں نہیں ہے پرنتو آتما کی بیٹری ڈسچارج ہونا وہاں سے چالو ہو گئی ہے. تو وہ گرتی کلا یا اترتی کلا اور یہ اب ہے برہمنوں کی چڑھتی کلا. ایک اور برہمن کیوں شریشٹھ ہے؟ دیوتاؤں سے شریشٹھ کیوں ہے؟ بھگوان مل گیا برہمنوں کو, وہاں پر بھگوان نہیں ملا ہے. اور اس کے لیے فاؤنڈیشن زیادہ شکتیشالی ہے. اور ایک ہی جنم ہوتے ہو. پراپتی اپراپتی کا انوبھو یہاں ہے. प्राप्ति और प्राप्ति का अनुभव वहां नहीं है. और दिनचर्या में क्या है? ब्राह्मण मुख वंशालय. सुबह सुबह ब्राह्मणों को कौन उठाता है और देवताओं को कौन उठाता है?
देवताओं को प्रकृति.
देवताओं को प्रकृति उठाती है और ब्राह्मणों को प्रकृति पति उठाता है. उधर प्रकृति उठाती इधर प्रकृति पति उठाता. देवताएं के पास इतना ये श्रेष्ठ ज्ञान नहीं है. देवताओं के पास ये पढ़ाई नहीं है. देवता त्रिकालदर्शी नहीं है. अभी मुरली में आ जाओ फिर ब्रह्म देवताओं के पास ये अविनाशी ज्ञान नहीं है. देवताओं को कोई वरदान नहीं मिलता. देवता एक्चुअली प्रारब्ध भोग रहे हैं. देवताएं रत्न जड़ित झूले पर झूलते हैं और ब्राह्मण भिन्न भिन्न झूले पर झूलते. कभी अतीन्द्रिय सुख के झूले पर, कभी खुशी के झूले पर, आनंद के झूले पर, ज्ञान के झूले पर, प्राप्तियों का झूला. तो वहाँ यहाँ अनेक झूले, वहाँ एक झूला है. यहाँ दैवी यहाँ ईश्वरीय परिवार है, वहाँ दैवी परिवार है. यहाँ मधुबन है, वहाँ मधुबन नहीं है. यहाँ ब्रह्मा भोजन है जिसके लिए देवता अभी तरसते हैं. वास्तव में तरसते हैं देवता कि ऐसे ही वतन में देवता कहाँ से आ गए? बाबा कहते हैं ना ब्राह्मणों और देवताओं का मिलन होता है. क्या यह संभव है? इमर्श किया जा सकता है पर वास्तव में संभव नहीं है. और क्या है? क्यों ऊंचे हैं?
Yes, sir.
वहाँ रॉयल बुद्ध है, यहाँ समझदार है, यहाँ ज्ञान रत्नों से खेलते हैं, वहाँ रत्न जड़ित खिलौनों से खेलते हैं। और यहाँ यहाँ वहाँ यहाँ त्रिलोकी नाथ है, वहाँ केवल एक लोक, एक लोक वहाँ एक बाप, यहाँ तीन बाप है, ये भी है। और ब्राह्मण क्यों श्रेष्ठ है सुशील भाई देवताओं से?
पढ़ाने कौन आते हैं?
वहाँ पढ़ाने वाले मनुष्य है, यहाँ पढ़ाने वाला ईश्वर है, भगवान है, त्रिकालदर्शी, तीनों कालों का दर्शन करते हैं, वहाँ एक काल का दर्शन करते हैं।
वहाँ बाप एक साथ एक एक सेकंड में साथ रहता है, एक एक सेकंड
बाप यहाँ निरंतर साथ है,
साथ और सेवा भी है,
यहाँ सेवा की अतिरिक्त खुशी है, सेवा वहाँ सेवा नहीं है, यहाँ वहाँ एक यहाँ तीन, तो एक बाप बच्चा है
देता है, वो सिंहासन में बैठता है, यहाँ बाप के दिल तक,
यहाँ दिल तक है, वहाँ पर रत्न जड़ित तक है, और यहाँ
प्रकृति को उपभोग करते,
यहाँ प्रकृति की हम सेवा करते, या प्रकृति को हम पावन बनाते हैं यहाँ पर,
और वहाँ प्रकृति को
उपभोग करते, वहाँ प्रकृति हमारी दासी है, यहाँ एक का पदम गुना प्राप्त होता है, यहाँ रोज वरदान प्राप्त होता है। वो सोने तुल्य, ये हीरे तुल्य है, ये युग संगम युग है, यहाँ पर एड़ी और चोटी मिल रही है, वहाँ केवल प्रारब्ध है, यहाँ पुरुषार्थ भी है, पुरुषार्थ की भी खुशी है,
और श्रेष्ठ प्रारब्ध भी है,
और श्रेष्ठ प्रारब्ध भी साथ साथ है, यहाँ असंख्य प्राप्तियाँ है, और उन प्राप्तियों का नशा है, यहाँ असंख्य भाग्य है, अकुट भाग्य है, और उन भाग्य का नशा भी है, यहाँ दुआओं का खजाना है, वहाँ दुआओं का खजाने का कोई संबंध नहीं है, घूम सकते हो, जा सकते हो, यहाँ पर संपूर्ण पवित्रता का ज्ञान है, वो पवित्र है, पवित्र बुद्ध, रॉयल बुद्ध, परंतु यहाँ अपवित्र, अपवित्रता और पवित्रता दोनों का ज्ञान है, खुशी का श्रेष्ठ खजाना है, दुआओं का श्रेष्ठ खजाना है, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान है, समय की पहचान है, कौन सा समय चल रहा है, यहाँ पर थकी हुई आत्माओं को की थकान मिट रही है, उसमें ज्यादा सुख होता है, धूप के बाद छाव में आ रहे हैं, यहाँ पर असंख्य दुख, अनेक दुखों में जीने के बाद सुख की प्राप्ति हो रही है, इसके लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये बहुत छोटा सा है, और इस छोटे में बहुत कुछ प्राप्ति है, यहाँ सेकंड फ्लोर, सेकंड में थर्ड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, कहीं पर भी जा सकते हैं, जब चाहो तब बाप से मिलन हो सकता है, एक सेकंड में, जब चाहो तब अलग अलग रूप धारण कर सकते हैं, यहाँ बहु रूपी, जैसे बाप बहु रूपी, वैसे हम भी वहाँ बहु रूपी है, ये टॉप पॉइंट है, यहाँ खड़े रहकर हम संपूर्ण संगम, पूरे सृष्टि चक्र को, इतिहास के चक्र को देख सकते हैं, हमने क्या क्या किया, यहाँ पर यह ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है कि इस ड्रामा में हम ही हीरो पार्टधारी है, हमसे ऊंच इस संसार में और कोई नहीं है, तो बाबा कहते हैं जिसे ऊंच, जैसे ऊंचे से ऊंचा बाप है, ऐसे हम आत्माएं भी ऊंचे से ऊंची श्रेष्ठ आत्माएं, यह अनुभव करते हुए चलते हो, निरंतर यह अनुभव होते रहे कि हमसे बड़ा इस संसार में कोई नहीं, ये समान है, हम पूर्वज है इस संसार की सर्वश्रेष्ठ आत्मा, क्योंकि दुनिया वालों के लिए तो सबसे श्रेष्ठ ऊंचे से ऊंचे है बाप के बाद देवता है, लेकिन देवताओं से ऊंचे आप ब्राह्मण आत्माएं हो, फरिश्ते हो, ये दुनिया वाले नहीं जानते, देवता पद को इस ब्राह्मण जीवन से ऊंचा नहीं कहेंगे, ऊंचा अभी का ब्राह्मण जीवन है, देवताओं से भी ऊंचे क्यों हो, उसको तो अच्छी तरह से जानते हो ना, देवता रूप में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा। परमात्मा मिलन का अनुभव इस ब्राह्मण जीवन में करते हो, देवता ही जीवन में नहीं। कल बाबा ने कहा था ना, ये मेला है, सदा चलता ही रहता है, प्रभु प्रेम परमात्मा मिलन का मेला है। ये ब्राह्मण ही देवता बनते हैं, लेकिन इस समय देवता ही जीवन से भी ऊंचे हो, ऊंच हो तो इतना नशा सदा रहे कभी कभी नहीं, क्योंकि बाप अविनाशी है और अविनाशी बाप जो ज्ञान देते हैं वह भी अविनाशी है, जो स्मृति दिलाते हैं वह भी अविनाशी है, कभी कभी नहीं। तो बाप अविनाशी है, जो ज्ञान वो देता है वह भी अविनाशी है। तो यह चेक करो कि सदा यह नशा रहता है या कभी कभी रहता है। मजा तो तब आएगा जब सदा रहेगा, कभी रहा कभी नहीं रहा तो कभी मजे में रहेंगे और कभी मूंछे हुए रहेंगे। अपने ही अंदर संस्कारों की बहस चलती रहेगी, केस बनती रहेगी, तो फिर किसके पास जाना पड़ेगा? काजी के पास। दूल्हे राजा बाप बैठा हुआ है मदद करने के लिए। दूल्हे राजा दूल्हे लाल बाप बैठा है, परंतु अंदर संस्कारों की बहस है, तो काजी के पास जाना पड़ेगा। फिर कभी केस लंबा होगा तो कभी केस बड़ा होगा, तो आग की तरह फैलेगा, तो अखबार में पड़ेगा, बहुत कुछ हो जाएगा। आग को बुझाया जाता है, फैलाया नहीं जाता। अभी बीवीआई तैयार नहीं हुई तो विनाश कैसे होगा? इसके लिए विनाश नहीं हो रहा है। अपनी केसेस काजी के पास, जज के पास, वकील के पास ले जाते हो तो एक है मजा, एक है मूंछ, कंफ्यूजन, करना है नहीं करना है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, करना है नहीं करना है, कहां तक करना है, यह है केसेस। तो अभी मजा, तो अभी अभी मजा, अभी अभी मूंछ नहीं, सदा रहे। जैसे ये श्वास सदा ही चलता है ना, यदि एक सेकंड भी श्वास रुक जाए या कभी कभी चले तो उसे जीवन कहेंगे? तो इस ब्राह्मण जीवन में निरंतर मजे में हो, अगर मजा नहीं होगा तो मूंझेंगे जरूर। फिर बाबा माताओं से बात कर रहे, तो क्या सुना? इस संसार में सबसे ऊंच हम है, ब्राह्मण है, देवताओं से भी ऊंचे हम। तो बाबा कहते हैं ये नशा सदा रहे, हमारा नशा धीरे धीरे सूक्ष्म और सूक्ष्म होते जाए। एक ही नशा लंबा समय नहीं चल सकता है। हमें भगवान मिल गया, भगवान पढ़ाते हैं, केवल इतना नशा नहीं चलेगा, 10 साल तक रोज ही पढ़ाते हैं। इस नशे को धीरे धीरे सूक्ष्म बनाना है, और सूक्ष्म नशे को ही समान कहा जाता है। तो धीरे धीरे आत्मा समान में स्थित हो जाए, समान में टिक जाए। तो माताएं सदा मजे में रहती हो, शक्तियां हो ना, साधारण तो नहीं हो, या घर में जाती हो तो साधारण माता बन जाती हो, नहीं, सदा यह याद रहे कि हम शक्तियां हैं। सारी दुनिया पर क्या जमाने वाली, परसों की मुरली, सारी दुनिया पर दाव जमाने वाली तुम एक एक कौन हो? भारत माता हो। भारत माता कोई एक नहीं है, परसों कहा था ना, तुम एक एक भारत माता हो, सारी दुनिया पर दाव जमाने वाली हो। तो साधारण माता तो नहीं बन जाती, नहीं, सदा यह याद रहे कि हम शक्तियां हैं। मंदिरों में जिनकी पूजा हो रही है वो हम है, भक्त जिनके सामने पुकार रहे, चिल्ला रहे, जिनकी पूजा वंदना अर्चना भक्ति कर रहे वो हम है, रोज सुबह सुबह उनको पुकार रहे, हे देवी, हे पापनाशिनी, हे असुर मर्दिनी, वो सब हम है, हद के नहीं है, बेहद के विश्व कल्याणकारी। शक्तियां अर्थात असुरों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली, रक्त बीज, कितने सारे असुर दिखाए, महिषासुर मर्दिनी, मधु कैटब, रक्त बीज, और बहुत सारे ऐसे कीचक कितने साउथ में जाओ तो वो गीत बजते रहते हैं, आई गिरी नंदिनी नंदित वंदिनी विश्व विनोदिनी भास्वरते। शक्तियों को कहते ही असुर संहारिणी अर्थात आसुरी संस्कार को संहार करने वाली, तो सभी शक्तियां ऐसी बहादुर हो और पांडव अर्थात विजयी। पांडव कभी यह नहीं कह सकते कि चाहते नहीं है लेकिन हार हो जाती है, क्योंकि आधा कल्प हार खाई, अभी विजय प्राप्त करने का समय है। तो विजय के समय पर भी यदि हार खाएंगे तो विजयी कब बनेंगे, इसलिए इस समय सदा विजयी। विजय जन्म सिद्ध अधिकार है, अधिकार को कोई छोड़ता नहीं है। लड़ाई झगड़ा करके भी लेते हैं और यहाँ तो सहज मिलता है। अगर कोई अधिकार हो तो लड़ाई झगड़ा करके ले ही लेते हैं, किसी को मारने की जरूरत पड़ी तो वो भी कर देते हैं। विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, बर्थ राइट। अधिकार का नशा वो खुशी रहती है ना, हद के अधिकार का भी कितना नशा रहता है। प्राइम मिनिस्टर को भूल जाएगा कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, सोएगा खाएगा तो भी भूलेगा कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, वो हद के अधिकारी है। हद का अधिकार वालों को कभी भूलता नहीं, हद के अधिकार प्राप्त करने के लिए लड़ाई झगड़ा करते हैं, सब कुछ अपनी जान दांव पर लगा देते हैं, परंतु प्राप्त करके रहते हैं। और तुम्हें तो सहज मिला है, तो हद का अधिकार और बेहद का अधिकार कितना भी कोई भुलाए भूल नहीं सकता। माया का काम है भुलाना और आपका काम है विजयी बनना, क्योंकि समझ है ना कि विजय और हार क्या है। हार के भी अनुभवी हो और विजय के भी अनुभवी हो। विजय का ज्यादा अनुभव भी है क्योंकि बहुत बार हार खाई, उसके बाद में समझ में आया कि ये विजय है। तो हार खाने से क्या हुआ और विजय प्राप्त करने से क्या हुआ, दोनों के अंतर को जानते हो, इसलिए सदा विजयी और सदा रहेंगे। क्योंकि अविनाशी बाप और अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी हम आत्माएं, सदा यह सदा इमर्ज रूप में रहे। अविनाशी बाप अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी, पहले कहा था अविनाशी बाप और अविनाशी ज्ञान, तो ये इमर्ज रूप में रहे। ऐसे नहीं है तो बने तो है, जानते हैं तो है, ऐसे नहीं प्रैक्टिकल में है तो जानते हैं वही निश्चय कर चलते हैं। तो हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा हो, हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा हो, कैसे होगा। बार बार जिसकी जीत होती रहती है उसे नशा रहता है। स्कूल्स में जो स्टूडेंट्स होते हैं, बार बार जो फर्स्ट आता है उसे वो एक हैबिट बन जाती है फर्स्ट आने की, वो सेटिस्फाई नहीं होता है, उसको सेकंड या थर्ड भी रैंक मिल जाए तो उसको फर्स्ट ही आना अच्छा लगता है, हमेशा ही फर्स्ट। तो विजय भी ऐसी है, विजय की एक बार आदत पड़ गई तो विजय ही चाहिए, फिर हम थोड़ा कम इससे कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, हर बात में विजय। तो बाबा कहते हैं निश्चय और नशा, नशे का आधार ही है निश्चय, निश्चय कम तो नशा कम। स्वयं में निश्चय, बाप में निश्चय, परिवार में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, ज्ञान में निश्चय, अपनी प्रारब्ध पर निश्चय, भविष्य में निश्चय, बाप के महावाक्यों पर निश्चय, भविष्यवाणी पर निश्चय, समय पर निश्चय, कौन सा समय चल रहा है उस समय पर निश्चय, हर चीज में निश्चय, कौन आ रहा है उसके अवतरण पर निश्चय, ब्रह्मा बाप पर निश्चय, इस ब्राह्मण परिवार पर निश्चय। तो जितना निश्चय उतना नशा, निश्चय कम तो नशा कम, इसलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। तो फाउंडेशन क्या हुआ, निश्चय। निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बनना, एक तो निश्चय है या फिर निश्चय नहीं है, अनिश्चय है, कम निश्चय ये नहीं है। एक तो 100% निश्चय या फिर जीरो, या तो निश्चय 1% कम मतलब 0%, एक तो 100 ऑल एंड नन फिनोमिनन कहते हैं इसको इंग्लिश में, एक तो पूरा या फिर कुछ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे बाबा पर थोड़ा थोड़ा निश्चय, मतलब कोई निश्चय नहीं है, लग रहा है शायद भगवान आ रहे हैं या शायद भगवान इस समय आ चुके हैं, थोड़ा थोड़ा निश्चय अर्थात कोई निश्चय नहीं। इंग्लिश में कोई कहता है कि ही हु गिव्स टू गॉड सेकंड प्लेस इन लाइफ गिव्स हिम नो प्लेस, जो भगवान को अपने जीवन पे सेकंड नंबर पर रखता है वो उसे कोई पद नहीं दे रहा है, किसी नंबर पर नहीं रख रहा है वो, नो प्लेस उसके जीवन में, जैसे भगवान की कोई जगह ही नहीं है, जिसकी जगह दो नंबर पर है भगवान की, जिसने अपने जीवन को सेकंड नंबर पर रखा है उसको हमेशा फर्स्ट नंबर पर रखा जाता है। नहीं तो अंत में रिजल्ट के समय भी प्राप्ति कभी कभी की होगी, फिर पश्चाताप करना पड़ेगा। अभी प्राप्ति है फिर पश्चाताप होगा, प्राप्ति का समय अब है फिर पश्चाताप का समय होगा, फिर पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे, पुरुषार्थ अभी करना है। कभी 94 की मुरली। तो प्राप्ति के समय प्राप्ति करो, पश्चाताप के समय प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। कर लेंगे हो जाएगा, नहीं करना ही है, निश्चय हो कर लेंगे, दिलासे पर नहीं चलो। कर तो रहे हैं ना, और क्या होगा, हो ही जाएगा, नहीं अभी होना है। किसी संडे बाबा ने कहा था ना, एक है होना चाहिए, एक संकल्प है, और फिर उसके बीच में एक व्यर्थ संकल्पों की ईंट की दीवार खड़ी करते हैं कि अंत में होगा, मुझे करना है। इस संकल्प से इस दीवार को तोड़ दो, हाई जंप लगा दो। जब दूसरों को चैलेंज करते हो कि श्वास पर कोई भरोसा नहीं, औरों को ज्ञान देते हो ना, तो पहले स्वयं को ज्ञान दो। दूसरों को सुनाते हो ना, अब नहीं तो कब नहीं, दूसरों को सुनाते हो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, तो जो दूसरों को सुनाते हो अब स्वयं को सुनाओ। हे मूर्ख मन, कहाँ जा रहे हो, कहाँ भटक रहे हो। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, मुरलियों में आता है ना शंकराचार्य का, हे मूर्ख मन। तुलसीदास लिखता है कि मैंने जो रामायण सुनाई किसको सुनाई, स्वयं को, दूसरों को नहीं। अरे मूर्ख मन कहाँ जा रहा है राम को छोड़कर, अब तो समझ, अब तो समझ। तो बाबा कहते हैं जब दूसरों को चैलेंज करते हो कि श्वास पर कोई भरोसा नहीं है, औरों को ज्ञान देते हो ना, तो पहले स्वयं को ज्ञान दो। अपने ही बैठकर अपने ही मन को समझाओ कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ भटक रहे हो। स्वयं से बातें करो, कल भी बाबा ने कहा ना, स्वयं से बातें करो, स्वयं से सेमिनार करो, आपस में सेमिनार करो, डायरी लिखी, स्वयं से बातें करना, आपसे बातें करना, ज्ञान का चिंतन करना, और तीसरा है स्वयं से स्वयं बातें करना। क्या बातें करेंगे स्वयं से, हाँ एक तो भाग्य की स्मृति, दूसरी और कुछ, वो तो भाग्य की स्मृति है, और जो दूसरों को भी सुनाते हो ना, ये वही ओम शांति भवन क्या है ये सुनाते हो ना, मधुबन क्या है ये सुनाते हो ना, ये शांति स्तंभ क्या है वो सुनाते हो ना, वो स्वयं को सुनाओ। स्थान का महत्व स्वयं को सुनाओ, एक तो, और क्या सुनाओ स्वयं को, ज्ञान ये स्वयं को सुनाओ, 7 डेज का कोर्स स्वयं को सुनाओ, और क्या सुनाओ स्वयं को, स्वयं का महत्व स्वयं जानना, तुम हो कौन, लक्ष्य को स्वयं को स्मृति दिलाओ कि हे योगी तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम क्या करने आए थे, यहाँ क्यों बने थे बाप का, साधन और सुविधाओं में खो जाने के लिए या केवल सेवाओं के जंगल में खो जाने के लिए, आए क्यों थे, इसलिए यहाँ पर श्रेष्ठ तपस्या करने के लिए आए किस लिए थे और क्या कर रहे हो, ये प्रश्न है सबसे बड़ा। मैं यहाँ क्यों आया था, क्या व्यर्थ की बातों का बातें करने आया था, परचिंतन करने आए थे यहाँ, दूसरों को देखने आए थे यहाँ, कि खान पान में आसक्त होने आए थे, क्या करने आए थे, कि बस साधनों के पीछे समय बर्बाद करने आए थे। मैं कौन हूं, मैं क्या करने आया हूं, मेरा लक्ष्य क्या है, ये सारी बातें स्वयं को सुनाना। और क्या क्या पाया, मनुष्यों से प्यार कर कर क्या क्या पाया, मनुष्यों से प्रीत की ना बहुत, मनुष्य पर बहुत भरोसा किया, क्या मिला, खाक, बहुत अभिमान था ना, बहुत अकड़ थी ना, क्या पाया, कुछ नहीं। तो अभी करने वाले हो या अब करने वाले हो तो सदा विजय के अधिकारी आत्मा है, विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। स्मृति से उड़ते चलो, कुछ भी हो जाए स्मृति में लाओ, मैं सदा विजयी हूँ, क्या भी हो जाए निश्चय अटल है, कोई टाल नहीं सकता। तो यहाँ बाबा ने क्या कहा, माताओं से बात की, शक्तियां हो याद दिलाया, फिर पांडवों से बात की, पांडवों को बाबा ने विजय की स्मृति दिलाई, और यहाँ पूरा विजय के बारे में कह रहे हैं। विजय का कनेक्शन निश्चय से है, नशे से है। अच्छा, अभी सभी ऐसी कमाल करके दिखाओ जो हर स्थान विजयी अर्थात निर्विघ्न हो, रूहानी वायुमंडल हो, रूहानियत ऐसी हो जो आने वाले थकी हुई आत्माओं को क्या मिल जाए, सहयोग मिल जाए, उन्नति हो जाए उनको, उनको लगे कि यहाँ आने के बाद हमारी सहयोग, हमारी उन्नति हो सकती है, ऐसा वातावरण हो, सहज पुरुषार्थ हो, कोई भी विघ्न ना आए, विघ्न आएंगे लेकिन हार नहीं होनी चाहिए। तो जहाँ विजय है विघ्न हट जाएंगे, तो निर्विघ्न बन जाएंगे। विघ्न तो बादलों की तरह है जो आते हैं और छट जाते हैं, छिन्न भिन्न हो जाते हैं, उनका कोई अस्तित्व, स्थायी अस्तित्व नहीं है, इसके लिए उनसे प्रभावित नहीं होना है। कोई भी चीज यहाँ परमानेंट नहीं है, जो कुछ हो रहा है सब अस्थिर है, इसके लिए जो विघ्न आ रहे हैं उनको आने दो और जाने दो, जो भी बातें हैं उनमें प्रवाह है, उनको पकड़ो नहीं, पकड़ के नहीं रखना है किसी बात को। बना दिया डायग्राम, क्या है, भारत माता, वाह। सुनो जग की माता हो, करो ललकार ललना हो, गीत है ना। सदा निर्विघ्न, ये कमाल करके दिखाओ, कमाल करनी है, कमाल। कोई भी गीता पाठशाला हो, उपकेंद्र हो, केंद्र हो, लेकिन स्वयं निर्विघ्न बनो और औरों को भी निर्विघ्न बनाओ, ऐसी कमाल दिखाओ। करना ही है, करेंगे देखेंगे नहीं, ये कहेंगे माना निश्चय में परसेंटेज है। सब ये खुशखबरी सुने कि सभी छोटे बड़े सेंटर्स निर्विघ्न है, मायाजीत का किला मजबूत करो, संडे में कहा था ना बाबा ने पार्टियों से, मायाजीत का ये वाइब्रेशंस फैलाओ, ये किला मजबूत हो, पक्का हो, माया की हिम्मत ना रह जाए, मायाजीत का झंडा बुलंद करो तो बाकी सारे झंडे झुक जाएंगे। अभी रस्सी खींच रहे हो, जब झंडा चढ़ जाएगा तब प्रत्यक्षता के फूलों की वर्षा होगी, हर देश की छाती पर एक ही झंडा होगा। तो बाबा कहते हैं ये कहेंगे माना निश्चय में परसेंटेज है। तो ये खुशखबरी सुने अभी सभी कि सभी छोटे बड़े सेंटर्स निर्विघ्न है, बाबा को ये खुशखबरी चाहिए, क्योंकि वो सब देखता है, जैसे गृहस्थियों को देखता है ना, संडे में कहा था ना, गृहस्थियों के स्थान को देखा, व्यवहार के स्थान को देखा, परिवार को देखा, तमोगुनी प्रकृति और परिस्थितियों का प्रभाव और राज्य का प्रभाव देखा। अगर गृहस्थियों को देख सकता है तो सेंटर पे भी कुछ तो देखता होगा, वो सेंटर तो और ज्यादा देखेगा, क्योंकि टीचर्स माना बाप समान, गद्दी नशीन हिम्मतहीन को लाठी देने वाली बाप समान, सर्वश्रेष्ठ आत्माएं, रहम दिल गद्दी नशीन, तो ऐसी आत्माओं के तो घर को देखेगा, घर को देखेगा, कौन क्या कर रहा है देखेगा, देखता है ना, बहने तो बैठी है। हाँ, वो तो उनका अपने घर को तो देखेगा ना, उसके समान है, उसके बाजू में बैठने वाली आत्माएं हैं, वो तो उनको तो देखेगा और देखेगा अच्छे से, देखेगा कौन सा सेंटर विघ्न है, अब किसमें विघ्न है किसमें निर्विघ्न है, और निर्विघ्न सेंटर अगर होगा तो ऊपर से फूलों की वर्षा कर देगा उस सेंटर पर, तो सुबह सुबह उठोगे तो फूल दिखेंगे पूरे खट। तो ऐसे फूल दिखने चाहिए, तो समझ लेना बाबा ने सर्टिफिकेट दे दिया, किसी प्रकार का विघ्न आ ही नहीं सकता, दूसरों के विघ्न को भी मिटाएंगे, विजयी बनेंगे, ऐसा समाचार आए। बाबा ये शुभ समाचार, शुभ वार्ता सुनना चाहते हैं, कोई तो सुनाए मुझे कि हम निर्विघ्न है, हमारा सेंटर निर्विघ्न है, हमारे सेंटर पर जैसी पवित्रता है वैसी और कहीं नहीं, यहाँ से पवित्रता की खुशबू फैल रही है सारे गांव में, सारे सिटी में शहर में खिंच खिंच कर आत्माएं आए, जिस सेंटर पर जितनी अधिक पवित्रता होती है, जहाँ की बहनों में पवित्रता की धारणाएं जितनी ऊंची है, वहां सेवा स्वतः ही होती है। कोई फूल यदि जंगल में खिल जाए तो बुलाता थोड़ी है किसी को, आओ, उसकी खुशबू खिंच खिंच कर आत्माओं तक को लेके आती है उसके पास। कोई महान योगी साईं बाबा के जीवन में दिखाते, वो गांव में थोड़ी गया था, शिरडी में, गांव के बाहर ही आसन लगा के बैठ गया था, वहां एक एक करके आना चालू हो गए और फिर लेके उसको अंदर, उसने किसी को नहीं बुलाया। तो पवित्रता में इतनी शक्ति है, इतनी पावर है, कहां से भी कोई विघ्न का समाचार न आए। ऐसा नहीं कहना कि हम तो ठीक है ये करते हैं, हम क्या करें, कोई बहाने नहीं चलेंगे। हाँ, कोई क्या भी करे, कुछ भी करे, बाबा को ऐसा समाचार चाहिए। किसी भी रीति से व्यर्थ को समाप्त करो, स्लोगन था, किसी भी विधि से जो करना है वो करो, सीधी उंगली टेढ़ी उंगली जो करना है, परंतु किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनना है। किसी भी विधि से अपवित्रता को समाप्त कर पवित्र बनना है। किसी भी विधि से स्वयं को ऊंचा उठाना है, निर्भय निर्विघ्न बनाना है। 3 मास विजयी रहकर दिखाओ, केवल 3 मास ही तो कहा है, बाद में भले विघ्न आने दो। तो अपने को स्वयं हमेशा ऐसा लक्ष्य देना है पुरुषार्थ में कि ये हफ्ता मैं क्या करूं, अपने पुरुषार्थ में क्या नवीनता लाऊं, ये मास में, ये मास के एंड तक मेरा ये जो संस्कार है जो चल रहा है कितने सालों से न मालूम, वो खत्म हो जाए। 1 मास का टारगेट या 3 मास का टारगेट बीच बीच में स्वयं को देते रहना है। कभी बाबा ने 1 मास तक केवल दाल और रोटी खाना है, ऐसे भी लक्ष्य दिया है यज्ञ में। ऐसे अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के लक्ष्य दिए, कभी भोजन की आसक्ति से मुक्त होने के लिए, तो कभी किसी और की आसक्ति से मुक्त होने के लिए 1 मास तक ये नहीं करेंगे, कभी तो प्रकृति से मुक्त होने के लिए, चाहे कितनी भी गर्मी हो 1 रात सो के देखो बिना फैन के, तब कहेंगे प्रकृति जीत, या चिंता हो जाती है तुरंत, नींद नहीं आएगी, अमृत वेला नहीं होगा, कितनी चिंता हो जाती है आत्मा, इतनी चिंता हो जाती है कि बात मत पूछो। जब भोजन करते हो तब चिंता नहीं होती कि मैं अगर भोजन थोड़ा ज्यादा कर लूं तो बीमार पड़ूंगा, हॉस्पिटल जाऊंगा, मेरी मृत्यु भी हो सकती है, कभी चिंतन चलता है। पर अगर कहो आज भोजन नहीं करो, आज भोजन अगर नहीं किया तो चक्कर आ जाएगा, कमजोरी आ जाएगी, हॉस्पिटल भर्ती हो जाएंगे, नमाल कितना सारा चिंतन क्यों तो चिंतन देखो कितना चल जाएगा। 1 दिन यदि फैन इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, फैन नहीं हो तो कितना चिंतन उसका, आज नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी, पहले ही सोच रहे। तो लास्ट लाइन, 3 मास में ही पता पड़ जाएगा। सभी हाँ करते हो तो ये कमाल करके दिखाओ। तो अपने आप को छोटे छोटे लक्ष्य देना है, प्रकृति जीत बनने का लक्ष्य। हरेक को अपना लक्ष्य खुद निर्धारित करना है, हरेक का पुरुषार्थ अपना है, हरेक के संस्कार कमजोरी, हरेक की प्रकृति शरीर की, हरेक कितनी कैपेसिटी है, हरेक की आत्मा की पावर अपनी अपनी है, अपने आधार से ही, अपने हम जितना कर सकते हैं उस आधार से लक्ष्य निर्धारित करो और देखो, स्वयं पर स्वयं एक्सपेरिमेंट करो, शरीर पर भी कुछ एक्सपेरिमेंट, मन की, मानसिक मन की दशा पर भी कुछ एक्सपेरिमेंट। ये करने से क्या होता है, मरने जाओगे एक दिन, खाना नहीं खाओगे, तो ये याद रखना। ओम शांति।